गंगा में हरिद्वार में स्नान जब करके एक डुबकी मारेंगे और दोबारा जब डुबकी मारेंगे तो वो पानी वहां नहीं होगा, वो पानी बहुत दूर चला जाता है, बहुत तेजी से जाता है, तो उसी पानी में दो बार नहीं नहा सकते हो। ऐसे इस दुनिया में कोई चीज हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती है, बदलती रहती है। और संसार का दूसरा अर्थ है जिसमें आना जाना रहे, जन्म ले और फिर, वैसे जन्म की परिभाषा हम रात बता रहे थे, कई संस्कृत भाषा में जन्म का अर्थ पैदा होना नहीं होता है, बर्थडे का मतलब पैदा होना नहीं होता है, जन्म का मतलब होता है जो पहले दिख नहीं रहा था अब वो देखने में आ रहा है, जो पहले इनविजिबल था वो अब विजिबल है। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो पता है कि बच्चा है, लेकिन बर्थडे नहीं कहते हैं उसको, तो बच्चा तो पहले ही है ना कि नहीं है, बच्चा तो पहले था, लेकिन जिस दिन वो हमारे आंखों के सामने आया उस दिन हमने उसको बर्थडे कहा। तो जन्म का मतलब ये नहीं है कि जन्म बर्थ हुआ, वो सिर्फ जो दिख नहीं रहा था वो दिखने में आ रहा है। इस दुनिया में कुछ समय कुछ चीजें दिखने में आती हैं, फिर वो चीजें वहां दिखने में नहीं आती, इसका मतलब खत्म नहीं हो गई। असल में ये सिद्धांत भगवत गीता का श्री कृष्ण अर्जुन को, पूरी भगवत गीता में एक यही बात विशेष रूप से समझाने का श्री कृष्ण का उद्देश्य था कि बदलते हैं शरीर, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, शरीर अनित्य है और बदलने वाला है। शरीर सदा के लिए रह नहीं सकता और आत्मा कभी समाप्त हो नहीं सकता। इस संसार में हम सिर्फ शरीर तक ही सीमित हैं। हमने शरीर की जानकारी से ज्यादा आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। वैसे सिंपल आपसे सामान्य से पूछा जाए, कोई सामान्य बच्चे से प्रश्न पूछ लो के ये तुम ये हाथ हो शुभन, ये क्या है, किसका है, तुम हाथ हो कि तुम्हारा हाथ है, हा? तुम्हारा हाथ है, ये किसका, तुम कौन हो, सर मेरा है, हाथ मेरा है, आंख मेरी है, कान मेरा है, लेकिन मैं कौन हूं बता, मालूम नहीं। ये ऐसा प्रश्न हम अपने आप से पूछ ले, ये सब चीज घर मेरा है, परिवार मेरा, मैं कौन, मैं इंसान हूं कोई कहेगा, ठीक है ना, कि इंसान हो, रिश्तेदार हो किसी का, तो फिर हमारे कितने, हमारा दादा कहां गया, अपने दादा कहां गए, नहीं कहां गए, वो तो शरीर उसका कहां गया, क्यों, तो मरे में और जिंदा में क्या फर्क है, हाँ मरे और जिंदा में क्या फर्क है, क्या चीज थी जो दादा से निकल गई, हाँ तो फिर दादा का शरीर घर में रखा ही नहीं, हाँ दादा ने घर बनाया और घर से दादा को निकाल दिया, हाँ तो ये जो विज्ञान है आत्मा के अस्तित्व, भारतवासियों का सौभाग्य है कि ये बात उनको पता है, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे दुनिया के पीएचडी ये नहीं जानते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा होती है। अब वैसे दूसरी दृष्टि से संसार को जेल खाना बोला जाता है शास्त्री भाषा में, शास्त्र की भाषा में इस दुनिया को, जैसे एक शब्द है दुर्ग समझते हैं, फोल्ट, जिसके अंदर अपने आप किसी को डाला जाता है कि बाहर निकल न जाए, तो ये दुनिया दुर्ग है और इसका जो इसकी सुपरिंटेंडेंट है, जो किसी को जाने न दे बाहर, वो दुर्गा है। तो ये क्या है दुनिया? ये प्रिजन हाउस है। और प्रिजन में कौन जाता है? जो जो स्टेट के ला का ब्रेक करता है, ला ब्रेक करता है वो जाता है। जो प्रकृति के नियम को तोड़ता है वो प्रिजन में जाता है। लेकिन प्रिजन किसकी है? गवर्नमेंट की। प्रिजन भी गवर्नमेंट की है और शहर स्कूल भी गवर्नमेंट की है, हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट की है। तो ऐसे इस दुनिया में अपने कर्मों से हम आते हैं कर्मों के सुख या दुख को भोगने के लिए। एक सच्ची सच्ची कहानी है। एक बच्चा था और बचपन से मेंटली रिटार्डेड था। फिजिकल भाषा में, डॉक्टरी भाषा में, डेवलप ब्रेन नहीं था। बेचारे अस्पतालों में दिखा के फिर जैसे हमारे पास है किसी साधु के पास, किसी पंडित के पास ऐसे पूछने गए तो एक सिद्ध पुरुष के पास अचानक ले गए। तो सिद्ध पुरुष ने उनको कहा बाहर जाओ, उस बच्चे को बोला तुम बोलो बताओ तुम ऐसे क्यों हो। उसने कहा आप पूछते हो तो मैं बताता हूं। मेरे को बाकी इस दुनिया में कोई 10-15 साल सजा भोगनी है। अब मैं नहीं चाहता हूं कि दोबारा कुछ और नया काम करके उसके लिए दोबारा आके भोगनी पड़े, इसलिए मैं अपने आप को पागल जैसा रख रहा हूं। उसने ये उत्तर दिया उस संत को और कहा कि मैं आपसे बात किया है, इसके लिए मेरे को 2 महीना ज्यादा जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोला ना तो मेरे को और ज्यादा यहां रहना पड़ेगा। लेकिन आप कृपा करके मेरे पिताजी को बता देना, माय पेरेंट्स को बता देना कि मेरे को डिस्टर्ब न करें, अपने आप सुखी रहें, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। तब एक हमारी जो जो सांसारिक रिलेशन के जो भाव है वो ये है कि हम हमेशा इस दुनिया में रहें, ये है हमारा स्वाभाविक भाव। लेकिन एक दूसरा, अब यहां से उठ के ऊपर उठ के देखें सिर्फ दुनिया से, तो बुद्धिमानी इसमें है कि जेल के अंदर कई दोस्त आपस में हो जाते हैं, रहते हैं साथ। हम तो जेल में प्रचार करने जाते हैं, हमको बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन वहां किसी की जेल से बाहर निकलने का टाइम होता है तो सब कहते हैं बहुत अच्छा है तुम जाओ, हमारे लिए प्रार्थना करना कि हम भी जल्दी बाहर निकल लें। वहां से कोई नहीं कहता है कि तुम थोड़े दिन और रुक जाओ वहां, हालांकि सबको अच्छा रिश्ता होता है। तो एक दृष्टि से इस दुनिया, ये दुनिया जेंटलमैन के रहने की जगह नहीं है, ये शांतों की भाषा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं दिस प्लेस इज नॉट ए फॉर ए जेंटलमैन टू लिव, जेंटलमैन के रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है जेंटलमैन के रहने के लिए जगह? क्योंकि जिस दुनिया ने, जिसने ये दुनिया बनाई है वो कह रहा है दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख की जगह है। दुनिया बनाने वाला भगवत गीता में श्री कृष्ण कहता है दुखालयम अशाश्वतम, ये न सदा रहने वाली है और ये दुख का आलय है। जैसे विद्यालय में विद्या होती है, औषधालय में दवाई होती है, ऐसे दुखालय में केवल दुख होता है। तो फिर इस दुनिया में सुख कौन सा है? हम सब सुख ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में, तो सुख क्या है? तब बहुत बुद्धिमानी से संतों ने उस सुख का वर्णन किया है। आपने डेजर्ट सुना है? देखा तो नहीं है डेजर्ट? सुना है डेजर्ट में रेती होती है, पेड़ भी नहीं होता है, पानी भी नहीं होता है और गर्मी में बहुत तपती है। उस डेजर्ट के अंदर प्यासे को पानी चाहिए और कोई कहे कि तुम्हारे को एक ड्रॉप पानी मिलेगा तो उस ड्रॉप पानी से डेजर्ट में उसकी प्यास बुझेगी? बस इस दुनिया में जो हमको सुख मिल रहा है वो एक ड्राप पानी डेजर्ट के बराबर है, ए ड्राप ऑफ वाटर इन ए डेजर्ट, ऐसा सुख इस दुनिया का है। अब प्रयास करके देख को खोज के देख लो, इस दुनिया का सुख डेजर्ट का सुख है। इसको माया बोलते हैं, इसको मृग तृष्णा बोलते हैं। मृग कहते हैं डियर को, और डियर डेजर्ट में दूर पानी देखता है, मिराज, गर्मी में पानी दिखता है, और पानी होता नहीं है, पानी होता नहीं है, और उस पानी को पीने के लिए भागता है उस पानी के लिए, और जब पानी जहां दिखता है वहां पहुंचता है, पानी उतना ही दूर होता है, क्योंकि पानी तो है ही नहीं, पानी सिर्फ दिख रहा है। पहले जो लोग जब गाड़ियां नहीं थी, घोड़े गधे के ऊपर सवारी करते थे ना, तो गधे को तेज भगाने के लिए क्या करते थे, एक लाठी के आगे यहां कैरेट बांध देते थे, और कैरेट गधे के आंख के सामने ऐसे घूमता था, तो घोड़ा या गधा समझता है मेरे को कैरेट खाना है, भागता था कैरेट खाने के लिए, लेकिन कैरेट लाठी में उतना ही दूर रहता था और तेज भागता था, अभी कैरेट के पास पहुंचूंगा, अभी कैरेट के पास पहुंचना, लेकिन कैरेट तो लकड़ी के अंदर उतना ही दूर रहता था, वो तो उसके मुंह में नहीं आता। इस दुनिया में सब कुछ ऐसे लगता है, बस ये काम हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, घर बन गया तो सुखी हो जाऊंगा, गाड़ी आ गई तो सुखी हो जाऊंगा, शादी हो, बच्चों की शादी हो गई तो सुखी हो गया हूं। लेकिन आज तक ये सबके हो गए लेकिन कोई सुखी नहीं हुआ, ये सत्य है कि झूठ है? ये सब हो गया, ये हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन आज तक सब कुछ होने के बाद भी किसी ने नहीं कहा कि मैं सुखी होगी। भागवत में चित्रकेतु की कहानी है, चित्रकेतु छठे स्कंद श्रीमद् भागवत में चित्रकेतु की वृत्तासुर की और चित्रकेतु की कहानी अगर आपने सुनी होगी तो। वृत्तासुर और इंद्र के बीच में युद्ध हो रहा था और वृत्तासुर भक्ति के श्लोक कह रहा था और इंद्र को कहता था तुम मुझे मारो, क्योंकि तुम मुझे मारोगे तो मैं संसार से मुक्त हो जाऊंगा, मैं तो भगवान के धाम जाऊंगा, और तुम यहां राज करोगे तो संसार में बंध जाओगे, इसलिए मुझे तुम जल्दी मार लो। तो परीक्षित महाराज को आश्चर्य हुआ कि ये वृत्तासुर असुर होते हुए भी ऐसे भक्ति के भाषण कैसे बोल रहा है। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज कहते हैं कि ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में महाराज चित्रकेतु था, और महाराज चित्रकेतु जब ये था इसको संतान नहीं थी, तो एक बार अंगिरा ऋषि चल के उनके घर में आए। तो साधु संत जब किसी के घर में आते हैं तो उनके आने का उद्देश्य होता है कि इनको ये बताएं कि ये संसार सदा रहने की जगह नहीं है, एक दिन यहां से जाना पड़ेगा, तो उसकी थोड़ी तैयारी कर लो। जैसे थोड़ी थोड़ी तैयारी, जैसे लड़की का घर में जन्म होता है ना, बुद्धिमान माँ थोड़ा थोड़ा चीज इकट्ठी करती है कि इसका विदाई करनी है, मुझे इसकी शादी करनी है, कुछ ना कुछ रखती रहती है कि ये मेरी बेटी के काम आएगा, ऐसे 20 साल इकट्ठा करती रहती है, और जब विदाई होती है तब उसको देती है, और तब रोती भी है और खुश भी होती है। रोती इसलिए कि बच्ची जा रही है, खुश इसलिए हो रही है कि अपने घर जा रही है, लेकिन वो इकट्ठा करती है बैठ के। ऐसे एक दिन इस दुनिया से हम जाते हैं, तैयारी करनी चाहिए। दुनिया वाले रोएंगे, पीछे रिश्तेदार नातेदार सब रोएंगे, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अगर तैयारी की होगी तो साधु संत महात्मा जब इस दुनिया से जाते हैं तो कीर्तन करते हैं। पूछे, बोला क्यों आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? बोला अपने घर जा रहा है, ये तो अपने घर जा रहा है। लड़की जब अपने घर जाती है तो माँ विदाई करती है, रोती है कि नहीं रोती, लेकिन खुश भी तो होती है कि नहीं होती है? क्यों खुश क्यों होती है? अपने घर जा रही है। और रो क्यों रही है? कि मेरे से बिछड़ रही है। तो हम इसलिए रोते हैं कि हमसे बिछड़ रहा है हमारा रिश्तेदार, लेकिन साधु ये शिक्षा देता है कि ये अपने घर जा रहा है, ये अपने घर जा रहा है, चित्रकेतु की कथा को आगे बढ़ाते हुए एक अच्छा उदाहरण हमारे अनुभव में है, आपसे बताएंगे। तो चित्रकेतु महाराज की कथा ये कि अंगिरा तो घर में आया था आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए, लेकिन जब भी कोई साधु इस दुनिया में किसी के घर में आता भी है और आध्यात्मिक शिक्षा दे के भगवत साक्षात्कार कराना चाहता है, फिर भी इस दुनिया के लोग बेचारे जो उनकी छोटी समस्याएं होती हैं, दुख होती है, दुख तो है, वो कहते हैं कि महाराज ये आपकी कथा बाद में सुनेंगे, पहले देखो हमारे बच्चे की शादी हो जाए या महाराज इस लड़के का कम से कम एडमिशन हो जाए कहीं, ये आशीर्वाद दे दो। प्रायः लोग यही पूछते हैं संसार की बात पहले, जो इमीडिएट उनको फायदा चाहिए। तो चित्रकेतु महाराज ने कहा महाराज आपकी कथा तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे को संतान नहीं है, इतना बड़ा राजा हूँ, पीछे प्रजा कैसे चलेगी, आप कृपा करके मेरे को आशीर्वाद दी के पुत्र हो जाए। आज की एकादशी जो है इस एकादशी का नाम भी पुत्रदा एकादशी, ये एकादशी भी स्पेशली पुत्र प्राप्ति के लिए रखी जाती है। और पुत्र शब्द का अर्थ है पुण्य नाम का एक नरक है, उससे जो डिलीवर कर दे उसको पुत्र बोलते हैं, जो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए पीछे तृपण आदि करे, जो उसको पुण्य नाम के नरक से मुक्त करे उसको पुत्र बोलते हैं, इसलिए पुत्र की आवश्यकता होती। तो अंगिरा ऋषि ने कहा आपको पुत्र तो होगा, लेकिन उसका नाम हर्ष और शोक रखना। बुद्धिमानी से कह के गए, समझ में नहीं आया है महाराज को, हर्ष का मतलब खुशी, शोक का मतलब दुख। पुत्र हुआ, बड़ा खुशी हुई, आनंद हुआ, राज में महाराज ने बड़ा उत्सव मनाया, खुश भी हो गया, बच्चा बड़ा भी होने लगा, हर्ष हर्ष चारों ओर फैल गया। अब एक रानी ने पुत्र को जन्म दिया, दूसरी सारी रानियां उसकी एनवियस हो गई, बोला ये राजमाता बनेगी, हम तो अब तो नौकरानी जैसी रह गई, राजा हमसे पूछता भी नहीं है, क्या करना चाहिए। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है, जो एनवी है ना, जो ईर्ष्या है, जो एनवी है, इसको इसको सूया कहते हैं, ईर्ष्या को संस्कृत में सूया कहते हैं, और जिसको ईर्ष्या नहीं होती है उसको अनुसूया कहते हैं। तो ये ईर्ष्या जो है ये बहुत खतरनाक है, ईर्ष्या कहते हैं किसी आदमी में कितने भी अच्छे गुण हो उसमें केवल अवगुण देखना, बुराई किसी के अंदर देखना उसको ईर्ष्या बोलते हैं। किसी में अच्छाई कितनी भी हो उसको न देखना, लेकिन उसके अंदर बुराई ढूंढना। हनुमान की यात्रा जब महेंद्र पर्वत से त्रिकूट पर्वत लंका तक सीता की खोज में है, तो उनके रास्ते में जो बाधाएं आई हैं उनमें से एक बाधा सिंह की है, सिंह की छाया गिरनी है, हनुमान की छाया को पकड़ लिया और हनुमान उड़ नहीं पाया, तो नीचे देखा मुंह फाड़ के बैठी, हनुमान एकदम उसके मुंह के अंदर घुस गया, उसके दिल में जाके दिल को चीर के फाड़ के उसको मार के बाहर निकला। तो ये सिंह का क्या है, ईर्ष्या, छाया क्या है, काली होती है छाया, आदमी की छाया काली होती है, तो छाया को जो पकड़ ले, इसका मतलब किसी आदमी के अंदर जो कोई अवगुण हो उसको पकड़ ले और उस अवगुण से उसको नीचे गिराने का प्रयास करे, वो सिंह का है, वो ईर्ष्या है। और हनुमान ने उसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त किया, ईर्ष्या को जड़ से भी उखाड़ के फेंक दिया। तो ये ईर्ष्या जब हमारे हृदय में आती है तो इसको न निकालेंगे तो हमारे रास्ता आगे भगवान की प्राप्ति का, भगवान की सेवा का पूरा नहीं होगा। रास्ते में हनुमान की चार परीक्षाएं हुई हैं, बड़ी अद्भुत परीक्षाएं हैं, अगर बीच में आई बात तो इसके ऊपर पार कथा करेंगे। लेकिन उन रानियों ने उस पुत्र को विष दे के मार दिया, चित्रकेतु महाराज के पुत्र को मार दिया। अब पुत्र मर गया, अब तो राजा रोदन करने लगा, रानी रोदन करने लगी, पूरा राज महाराज मुकुट फेंक दिया, क्या करना चाहिए, अब दुख हो गया। नारद जी के साथ फिर अंगिरा ऋषि आए और आते ही महाराज ने पहचाना नहीं, वैसे आकर स्वागत किया, क्या हो गया, पुत्र का मृत्यु हो गया। तो नारद जी ने कहा कहाँ है, तो ये शरीर पड़ा है, महाराज पकड़ के बैठे हैं उसको। नारद ने कहा बैठो, बोला इस पुत्र को मैं बुलाता हूं। पुत्र को बुलाया, आत्मा उसकी आया उस शरीर के अंदर। लड़का उठ के बैठ गया। महाराज बड़ा प्रश्न होकर गले से लगाया, मेरे बेटे कहां चले गए थे? बेटा ऐसे देखता है, क्या कह रहे हो? बोला मेरे बेटे, बोला कई बार तुम्हारा मैं पिता बना हूं, कभी चाचा कभी नाना कभी क्या बना हूं, इतने दिन तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता था, अब मेरा यहां का टाइम खत्म हो गया है, अब मेरे को कहीं और जाना है। और फिर वो वापस शरीर समाप्त हो गया। तब महाराज चित्रकेतु ने पूछा, आप हो कौन? आपने इस बच्चे को जीवित किया और इस बच्चे ने ये मुझे कहा, आप हो कौन? तब अंगिरा ने कहे, मैं वही हूं जिसने आपको आशीर्वाद दिया था पुत्र प्राप्ति का, और ये नारद है। और तब बताया कि महाराज चित्रकेतु, मैंने आपको कहा था बच्चे का नाम हर्ष और शोक है, पहले तो आपको बड़ा खुशी होगी, लेकिन खुशी जो इस दुनिया में खुशी है ना, उसके पेट में, खुशी के पेट में दुख समाया हुआ है। ये संस प्रसजा भोगा दुख योन्य एवते आद्य अंतवंत कौन्त्य नतेषु रमते बुद्धा। इस दुनिया का जो सुख है उसके उसके गर्भ में दुख पलता है। इस दुनिया का सुख शुरू होता है फिर सुख समाप्त होता है। इस दुनिया का सुख सदा रहने वाला नहीं है और इस दुनिया का दुख भी सदा रहने वाला नहीं है, आद्य अंतवंत। इसलिए बुद्धिमान इसमें कभी इंटरेस्ट नहीं लेते। अब इस चित्रकेतु की कथा में हमने जब इसको पढ़ा समझा तब हमने इसका अनुभव किया। ये देखो एक रुपया है इस वक्त मेरे जेब में है ना, मैं कहता हूं मेरा है, मेरा है ना। बाहर जाके बाजार में मैं दुकान वाले से कुछ कह लू ले लू तो उसको दूंगा ना, तो इसको अपना समझेगा हा? जब से ये रुपये का नोट बना है तब से कितने जेब में गया, कितने लोगों ने इसको अपना माना, लेकिन इसके ऊपर क्या लिखा है पढ़ा है कभी? हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ मॉरिशस। इसके ऊपर क्या लिखा है देखो, यही लिखा है ना। हाँ, सब इसको कहते हैं मेरा है और कई जेब बदल चुका है, जिसके पास गया उसने इसको अपना माना, लेकिन इसके ऊपर पढ़ा हुआ किसी ने नहीं जाना कि ये रिजर्व बैंक ऑफ मॉरिशस का है। तो जीव आत्मा जब किसी के घर में आती है वो उसको मेरा मानता है, जब दूसरे के घर में जाती है तो दूसरे का मानता है, लेकिन उसके ऊपर लिखा है ममई वंश जीव लोके जीव भूता सनातन। श्री कृष्ण कहते ये मेरा है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? रिजर्व बैंक ऑफ मॉरिशस की, किसी आदमी की नहीं है। ये गिर जाए किसी दूसरे के मिले तो उसकी हो जाएगी। ये बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल एग्जाम्पल समझने के लिए है। जो जो नोट मेरे जेब में मैं उसको मेरा समझता हूं, जब कोई चीज लेके किसी को दूंगा तो वो उसको अपना समझेगा। ये जेब जैसे नोट बदलता है ऐसे आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर बदलता है और जहां जाता है वो उसको अपना मानता है। लेकिन आत्मा है तो भगवान का, आत्मा तो परमात्मा काम से, और उसके पास जाएगा तभी सुखी रहेगा। जेब बदलने से काम चलेगा नहीं, ये जब बेचारा फट जाएगा ना तब फिर जाके बैंक में जमा करना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ले लो वापस अपना, अब हमारा काम पूरा हुआ। तब चित्रकेतु को नारद जी ने उपदेश दिया, कहा कि अब तुम ये संकर्षण की उपासना करो। अब ये 2 तारीख को बलराम जी की जयंती है, बलराम जी संकर्षण है नीलांबर, बहुत प्रसन्न जल्दी होते हैं और शक्तिशाली हैं, इसलिए उसी दिन रक्षाबंधन है। हमारी रक्षा कौन करेगा? बलराम जी रक्षा करने वाले हैं। रक्षा हमारी आध्यात्मिक रक्षा, हमारी भक्ति की रक्षा, हमारे ज्ञान की रक्षा, हमारे वैराग्य की रक्षा बलराम जी की शक्ति से होती, और इसलिए जो बलराम जी की शक्ति से संपन्न है वो दूसरे को रक्षा का धागा बांधता है। और तब पहले साधु संत महात्मा ऐसे इस दिन के ऊपर जाके अपने यजमानों को, राजाओं को, अपने शिष्यों को जाके शक्ति का और रक्षा का धागा बांधते थे। बाद में बहनों ने भाइयों को बांधना शुरू किया, लेकिन प्राचीन काल में ये ऐसे उत्सव हुआ करता था। तो संकर्षण की उपासना करने के बाद वो चित्रकेतु एकदम विद्याधर बन गया, ह्यूमन से उसका अपग्रेड हो गया। जैसे कोई आदमी जब मॉरिशस का था तो अमेरिका में रहने लग गया, वो तो उसका अपग्रेड हो गया, उसका स्टैंडर्ड सब कुछ बढ़ गया। अब तब उसको फैसिलिटीज ज्यादा मिल गई और उस प्लेन में विद्याधरों के साथ घूमते हुए जाता रहा। कैलाश के ऊपर से जा रहा था तो नीचे शंकर जी को देखा और शंकर जी की गोद में पार्वती बैठी थी और सामने चार कुमार बैठे थे, नारद जी बैठा था उनकी सभा में, पार्वती शंकर जी के पास बैठी थी आलिंगन में। तो चित्रकेतु ऊपर से हंस पड़ा, कहा देखो तो शंकर जी संतों की सभा में अपनी स्त्री को साथ आलिंगन में बिठा के बैठा है। हंस पड़ा। पार्वती को क्रोध आ गया कि ये हमारे को शिक्षा देने वाला आया, ये देखो सामने ब्रह्मा, ये ब्रह्मा पुत्र नारद बैठा है, ये चार कुमार बैठे हैं और ये हमसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और ये मूर्ख हमारे ऊपर हंस रहा है, जाओ तुम असुर बन जाओ। चित्रकेतु को पार्वती ने श्राप दिया, चित्रकेतु विमान से नीचे उतर आया, प्रणाम किया शंकर और पार्वती को, कहा मां मेरे से अपराध हो गया, अब आपने श्राप दिया था, मुझे आपत्ति नहीं है, मैं असुर बनने को तैयार हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैंने गलती की, मेरे को क्षमा कीजिए मेरी त्रुटि का। और वापस जाने लगा चित्रकेतु तो शंकर जी ने पार्वती को कहा देखो श्राप ये भी तुमको दे सकता था लेकिन ये वैष्णव है, साधु है, इसको श्राप देना अच्छा नहीं लगा, इसलिए ये अब वो परीक्षित महाराज को कहते हैं सुखदेव कि वो पार्वती के श्राप से असुर बना लेकिन पहले वो महान भगवान का भक्त तो था ही। तो ये बीच में सिर्फ इतना दिखाने के लिए कि संसार के अंदर थोड़ी देर के लिए कुछ रिश्ते आते हैं जाते हैं, उसके लिए सद्भावना रखनी चाहिए उस आत्मा के लिए। हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार पीछे पूजा है, पाठ है, उसके निमित्त जो भी यज्ञ दान तप आदि जो भी किया जाए वो तो हमारा धर्म है, लेकिन उसकी सदगति हो ये हमारा लक्ष्य हो। हम ना हम सदा रह सकते हैं ना हमारा कोई हमारे साथ सदा रह सकता है, इसलिए सबसे अच्छा किसी को हम सहयोग दे सकते हैं चाहे इस दुनिया में चाहे परलोक में जहां भी हो, वो एक चीज जो वहां जाएगी और उसको मिलेगी। मां कहा मैं राधा गोविंद महाराज का प्रवचन सुन रहा था कि असल में जब पीछे हम किसी के निमित्त पाठ पूजा करते हैं वो दिखने में कुछ नहीं लगती है, लेकिन जैसे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा चेक साइन की हुई हो तो उसके आपको उससे आप सब चीजें खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते जाके, चेक तो कागज का टुकड़ा ही है ना, लेकिन उस चेक के अंदर अगर कुछ पैसा लिखा हुआ है तो आपकी सब जरूरत की चीजें मिल सकती है कि नहीं सकती। तो ऐसे ये आध्यात्मिक दृष्टि से जब कोई पूजा पाठ की जाती है तो ये मानो कि उस चेक की तरह उस व्यक्ति को जहां है उसकी आवश्यकता जो है वो पूरी होती। ये जो जो पहले तो इससे एक सिद्धांत ये स्थापित होता है कि आत्मा अमर है तब हम पीछे पूजा करते, नहीं तो क्यों करते। शरीर तो हम अपने हाथों से, जैसे तुम कहे थे दादा का, आप कह रहे थे ना दादा के शरीर को हम तो अग्नि संस्कार करके आए लेकिन फिर भी दादा का श्राद्ध करते हैं, इसका मतलब हमको आत्मा के अमर होने के ऊपर विश्वास है, तब करते, नहीं तो क्यों करते। तो ये एक चीज ही हमारे को ये विश्वास दिलाती है कि आत्मा अमर है। तो यहां क्या चीज सबसे अच्छी और उत्तम हम उनको दे सकते हैं, एक संतों की भाषा में लिखा है जिस मार्ग के गिने जाए न कोसा। जब इस दुनिया से हम जाते हैं तो कितने उसमें मील है किलोमीटर है गिनना मुश्किल है, वहां तुम्हारे साथ क्या चीज काम आएगी। हरि नाम वहां संग तोषा, तोषा कहते हैं खाने की चीज को, जैसे आप सुबह काम पे जाते हो तो घर से टिफिन ले जाते हो, तो ऐसे जब इस दुनिया से कोई जाता है तो क्या साथ ले जा सकता है, बोला उसके साथ उस वक्त एक ही चीज जाएगी हरि नाम वहां संग तोषा। तो भगवान के नाम का उच्चारण करे और फिर संकल्प करके उसका फल उस आत्मा को अर्पण करे तो उसको जहां भी है उसका फल मिलेगा। ये हमारे वैदिक संस्कृति का
सिद्धांत है शास्त्रों का नए में और अनादिकाल से ऐसे होता आ रहा है। भगवान श्री राम चित्रकूट में थे, जैसे भरत से सुना के दशरथ जी नहीं रहे पिता, तो नंदी नदी मंदाकिनी बहती है उसके किनारे के ऊपर गए और वहां तो आटा नहीं था उनके पास, वो वनवास में थे। वो इंगूदी का एक पेड़ था, उस पेड़ के अंदर जैसे ये आपके यहाँ अपने एकादशी में क्या मैन्योक लाते हैं इस तरीके से, उसका वो निकाल के गुदा उसका गोला बना के और पिंड दान करने लगे, तो दशरथ जी का हाथ बाहर निकल आया उस पिंड को लेने के लिए। तो पंडित जी ने कहा, महाराज माँ श्री रामचंद्र, आप ये पिंड जो है ये कुछ घास के ऊपर रखो, पिताजी के हाथ में नहीं देने का। बोला क्यों? बोला शास्त्र में पिंड कुश के ऊपर रखने का नियम है। अगर आपके पिता का हाथ तो निकला है, लेकिन सबके पिता का हाथ नहीं निकलेगा, और जब सबके पिता का हाथ नहीं निकलेगा तो लोग कहेंगे कि महाराज तुम्हारी पूजा ठीक नहीं, तो इसलिए शास्त्र में जो नियम लिखा है उस नियम के अनुसार आप पिंड उसके ऊपर, और वहां लिखा है कि जिसके पास जो चीज होगी वही पिंड में देगा तब भी उसको वही मिलेगा जिसकी उसको वहां जरूरत है। ये वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र के द्वारा दशरथ जी के लिए ऐसे पूजा का वर्णन चित्रकूट में आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आपको जैसे कह रहे थे, असल में संसार में अमर भक्त होता है, भगवान की भक्ति करता है वो अमर होता है, बाकी सब संसार में राजा महाराजा समय के साथ काल के गाल में चले जाते हैं, उसका कोई नाम तक नहीं जानता है। कई लोग आए राजा राज किया खाया पिया चले गए, कोई उनको नहीं जानते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, अपना कुछ था नहीं, फिर भी भक्त था, तो आज भी घर घर में पूजा जाता है। ये हनुमान जी के पहनने के लिए भी लंगोटे के अलावा और कुछ भी नहीं, कभी उसके पास और वस्त्र नहीं, और ऐसा आज भी घर घर में पूजा जाता है। वो भगवान के परम भक्त है। तो सत्रेता युग की कथा है, कई लाखों 100,000 मिलियंस ईयर गुजर गए हैं, लेकिन आज भी घर घर में पूजा जाता है। संकेत ये है कि भक्त बनना भगवद गीता का कृष्ण का संदेश है, भवमद भक्तो, और भक्त नित्य है शाश्वत है सदा है। यही एक ऐसा यही एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, एक ऐसा टाइटल है जो कभी नाश नहीं होता है, भगवान का भक्त। तो भगवान के भक्त का काम क्या है, हनुमान जी की सेवा से हमको सीखने को मिलता है सीता की खोज करना। सीता क्या है? लक्ष्मी। सीता लक्ष्मी है। किसकी लक्ष्मी किसकी है? सीता किसकी है? राम की। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। इस दुनिया में मूर्ख लक्ष्मी को अपना मानने लगते हैं, लक्ष्मी को भोगना चाहते हैं। दो चीजों को लोग भोगना चाहते हैं इस दुनिया में, एक धरती मेरी है, ये जमीन मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है, ये मिट्टी मेरी है, और ये पैसा मेरा है। पैसा शास्त्र में लक्ष्मी माना जाता है, और पृथ्वी तो देवी है, माता है, पृथ्वी आठ माताओं में एक हमारी माता है, और जब उसको कोई मालिक बन के भोगने का प्रयास करता है वो हंसती है कि तुम्हारे से पहले कई आए, इसके मालिक बनने का प्रयास किया और चले गए, और किसी की आज तक बनी नहीं। आप बताओ 200 साल पहले मॉरिशस में आपका कुछ था क्या? नाम निशान भी नहीं था, और उससे पहले जो कई फ्रेंड थे कहाँ चले गए, वो उनका नाम निशान भी नहीं। तो ये तो आपका न था ना उनका था, किसी का भी नहीं था, ये तो भगवान का है, ये किसी को समझ में नहीं आता। तो पृथ्वी विष्णु पत्नी है, लक्ष्मी विष्णु पत्नी है, और वही हम वैसे हरे कृष्ण मंत्र में हरे किसको संबोधन करते हैं? राधा रानी को, और सहस्र लक्ष्मियां हजारों लक्ष्मियां राधा रानी का विस्तार या अवतार हैं। जैसे भगवान के अवतार इस दुनिया में आते हैं, ऐसे भगवान की शक्ति के बहुत सारे विस्तार लक्ष्मियां हैं। तो हरे शब्द से हम भगवान की सेवा मांगते हैं, तो हमको भगवान की सेवा कौन देगा? भगवान की शक्ति देगी। भगवान की लक्ष्मी अथवा राधा अथवा सीता वो हमको भगवान की भक्ति या सेवा देगी। तो हनुमान उस लक्ष्मी को जो रावण भोगने के ले गया है उससे वापस छुड़ा के राम को लाके देना चाहता है। ये भक्त का कार्य है। अब इस कार्य में जब भक्त जाता है तो उसमें रुकावट क्या आती है? महेंद्र पर्वत से जब हनुमान उड़ा है, बहुत बड़ा विराट रूप धारण किया, विकार बड़ा रूप धारण किया है, छलांग लगा ही आकाश में उड़ा है। एक मार्ग है, उसको बोलते हैं देव मार्ग, ऊपर से चलने का, उस मार्ग से जा रहा है हनुमान। तो समुद्र के अंदर, पहले तो समुद्र ने कहा हमारा नाम सागर है, समुद्र को सागर बोलते हैं ना, इसका सागर नाम कैसे हुआ? महाराज सागर हुए हैं सूर्य वंश में, उस महाराज सागर ने समुद्र का, उसके नाम के पीछे समुद्र का नाम है सागर, सागर ने सागर बनाए। तो समुद्र ने कहा हम सागर महाराज के सूर्य वंश में श्री राम की सेवा के लिए हनुमान जा रहा है, इसकी सेवा करनी चाहिए हमको। तो एक पर्वत समुद्र के अंदर धंसा हुआ था, मीनाक सोने का बना हुआ। उस एक समय में पर्वतों को पर हुआ करते थे, उड़ते थे पर्वत, वे भागवत में लिखा है, और उड़ के कहीं भी जाके बैठते थे तो कोई शहर नाश कर देते थे। तो इंद्र ने वज्र से उसके पर काट दिए। ये बात हमारी समझ में नहीं आएगी, लेकिन वैसे तो पर्वतों के पर हो ना हो, अभी भी ये आपका आइलैंड अंदर से कोई ज्वाला निकली है तब बना है, पर नहीं हो तो उड़ के सब कुछ समाप्त कर देते हैं, आज भी पत्थर गिर सकते हैं। तो मीनाक पर्वत को उस वक्त वायु देव ने धक्का देकर समुद्र में गिरा दिया, तो वो बच गया था। उसने कहा मेरे ऊपर भी हनुमान के पिताजी का बहुत बड़ा उपकार है, तो आज ऐसे काम करो तुम बाहर निकलो समुद्र से, और बहुत लंबा 100 योजन का सफर है, हनुमान को कहो थोड़ी देर विश्राम कर ले और थोड़ा फल फूल खा ले, थक गए आगे चलेगा बाद में। तो मीनाक पर्वत बाहर निकला सॉलिड गोल्ड का, और मानव का रूप धारण करके हाथ जोड़ के हनुमान को कहने लगा आप जरा फल फूल खा लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आगे बहुत लंबा सफर है। और देवताओं की प्रेरणा से, समुद्र देवता की प्रेरणा से ये हुआ, और ये परीक्षा लेना चाह रहे थे कि हनुमान में शक्ति कितनी है, बल कितना है। अब हनुमान जी ने देखा, हाथ लगाया, बोला आपका ये जो आतिथ्य है, जो आप ये मेरा होस्ट बन रहे हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं इस इधर रुकूंगा नहीं, राम के काम में विश्राम नहीं किया जा सकता है। उसको हाथ लगाया, स्वीकार किया और अपने छलांग को जारी रखी। देवताओं ने देखा बल तो है, लेकिन बुद्धि का पता लगाए, केवल बल से काम नहीं होता है, बुद्धि भी तो होनी चाहिए ना। तो सांपों की माता सुरसा, सांप की माता सुरसा को कहा जाके परीक्षा लो। सुरसा हनुमान के रास्ते में खड़ी हो गई और मुंह खोल के बोला देखो ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया हुआ है, मेरे सामने जो भी आएगा उसको मेरे मुंह में आना पड़ेगा, आप मेरे मुंह में आ जाओ। हनुमान का माता जी मैं राम जी का काम पे जा रहा हूँ, सीता का पता लगा के आ जाऊंगा, फिर आपके मुंह में आ जाऊंगा। बोला वापस कोई नहीं आता, वापस कोई नहीं आता, अभी आना पड़ेगा। बोला ठीक है फिर तुम थोड़ा मुंह बड़ा करो, मैं अंदर कैसे जाऊंगा। तो सुरसा ने मुंह बड़ा किया, हनुमान बड़े हुए, सुरसा ने मुंह बड़ा किया, हनुमान बड़ा हुआ। और एक समय आया जब हनुमान का, जब सुरसा का मुंह बड़ा हो गया तो हनुमान बहुत छोटे हो गए और मुंह के अंदर चले गए और चल के बाहर निकल आए। सुरसा ने कहा बेटा मेरी आशीर्वाद है, अब तुम जाओ, मेरा वचन पूरा हुआ। तीसरी बाधा अभी आपको बताई, सिंह की ने छाया को ग्रहण किया, उसको हनुमान ने मार दिया। त्रिकूट पर्वत के ऊपर उतरा, रात का शाम का इंतजार किया, छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करना चाहा। लंका की सुरक्षा की वास्तु देवी ने हनुमान को पकड़ लिया। इतना छोटा सा हनुमान तो इतना बड़ा था, लेकिन छोटे रूप धारण कर कहां जा रहे हो चोर? हनुमान ने मुड़ के देखा कि चोर रावण के चोर में सीता वो चुरा के आया, मैं ढूंढने जा रहा हूं चोर वो के मैं ये मुझे चोर कह रही है। लंकनी ने हनुमान के ऊपर हाथ उठाया। हनुमान ने कहा है तो स्त्री, लेकिन मेरे को मारा है, राम के काम में बाधा है, उसको दे मारा, थोड़ा धक्का, इधर खून निकला, मुंह से नीचे गिरी। और लंकनी उस वक्त से उठी और कहा ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था जब कोई वानर तुम्हारे को परास्त करे तब समझना कि रावण का अंत होने वाला है। अब मेरी आशीर्वाद है, तुम जाओ, जाके लंका को ढूंढो। तो ये चार हनुमान के रास्ते में रुकावटें आई सीता के ढूंढने में। पहली रुकावट क्या थी? मीनाक पर्वत, सोने का ऊपर फल फूल। भक्त जब भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान की भक्ति में सेवा में जाता है, तो पहले भोग आता है। आओ बैठो खाओ, सोना है, धन है, घर है, गाड़ी है, और उसमें फंस गया तो भक्ति नहीं मिलेगी, सीता तक नहीं पहुंचेगा, सेवा नहीं मिलेगी। उसको कैसे, उससे कैसे बचना चाहिए? त्याग से हाथ लगा दिया, स्वीकार किया, लेकिन भोगा नहीं। तो त्याग होगा तब भोग से बचेगा, तो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो अहंग्या सुरसा रस कहते हैं, रस का मतलब भोग। दूसरा ये कौन सा भोग है? अहंकार, मैं बड़ा हूं, नहीं तुम बड़ा हो, मैं बहुत पुरा हूं, मैं पुराना आदमी हूं, मैं इतना सारा शास्त्र पढ़ा हूं, सुरसा की तरह मुंह बड़ा, हनुमान का मुंह बड़ा, अहंकार, मैं बड़ा इस दुनिया में सब बड़े होने के चक्कर में फंसे हुए। इस अहंकार के ऊपर हनुमान ने कैसे विजय प्राप्त की? छोटा बनकर। जब सुरसा बहुत मुंह बड़ा कर दिया तो अपने आप को छोटा कर दिया। तो इस दुनिया में जो अपने आप को थोड़ा सा निम्रता वाला बनाता है, छोटा बनाता है, वो इस दुनिया के अंदर से आगे बढ़ के भगवान की लक्ष्मी को, सीता को, भक्ति को जो आशीर्वाद देगी उसको प्राप्त करना है तो अहंकार को त्यागना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। ये माला की हमारी झोली में कभी प्रसाद पड़ा होता है, उसमें कोई चुंटी बैठ जाती है, एक छोटी सी, क्या फोमी बोलते हैं, फोमी, वो बैठ जाती है। और हम दिल्ली से चढ़ते हैं, मॉरिशस आते हैं, बगैर वीजा, बगैर टिकट, चुंटी वृंदावन से मॉरिशस, और मॉरिशस की चुंटी उधर पहुंच जाएगी। तो छोटा बनेगा तो कोई ले जाएगा। अब इसके अंदर मैं किसी बच्चे को तो नहीं ला सकता हूं, लेकिन चुंटी तो आ सकती है ना, तो कोई छोटा बन जाएगा तो कोई उसको उठा के ले जाएगा। तो छोटा बनना इस दुनिया में कला है। अगर किसी को हनुमान की तरह आए तो रास्ते में कोई रुकावट नहीं। और फिर ईर्ष्या, तीसरी रुकावट ईर्ष्या है। ये जो एनवी है ना, ये आदमी को पकड़ के नीचे गिराना चाहती है। और इसके लिए हनुमान ने कहा उसको बिल्कुल जड़ से निकालना चाहिए। जब तक ये दिल से नहीं निकाली जाएगी तब तक आगे हमको बढ़ने नहीं देगी। ईर्ष्या पकड़ के रख देती है, आगे नहीं बढ़ने देती। और ये लंकनी चौथा जो बांधा थी, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है। कोई साधु संत से भक्त बनता है ना, तो अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं बेकार हो गया, खराब हो गया, ये तो अब राम राम जप रहा है। अरे अच्छा काम कर रहा है, इसको खराब क्यों कहते हो? ये तो कमाल है, अच्छा आदमी है, तो नशा भी नहीं करता है, कमाल है, शराब नहीं पीता है, कैसा आदमी है, ये बेकार हो गया। लोग समझते हैं कि शराब पीना अच्छा है और इसने छोड़ दिया इसलिए खराब हो गया। ये लंकनी की भाषा है। चोर है रावण, सीता को उठा के आया है वो, और कितनी अप्सराएं लेके आया है, कितनी देवताओं की कन्या ले आया, कितनी ऋषियों और ऋषियों की कन्याएं ले आया है। और हनुमान जो उनको ढूंढने जा रहा है उसके बोले तुम चोर हो। ऐसे लोग जो फॉल्स प्रोपेगेंडा करते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको थोड़ा सा हल्का धक्का देना चाहिए, तो वो थोड़ी देर के बाद संभल जाएंगे और कहेंगे तुम ठीक हो। और हमारा ये मानना है, हमने अनुभव करके देखा है, कभी कोई सीधे रास्ते पे चलता है ना, पहले तो सारे ही जानने वाले दोस्त मित्र रिश्तेदार कहते हैं ये तो बेकार हो गया, हमारे लिए किसी काम का नहीं। अगर वो रुक गया और 10-15 साल उसने अपने काम को चलाया तो वो सब लोग कहेंगे अब तुम महात्मा हो, साधु हो, तुम्हारे पांव छुएंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन 15-20 साल तक वो देखते रहेंगे ये कब ये गिरेगा, इसको अब गिरना चाहिए, अब तो ये छोड़ के वापस आएगा। तब तक नहीं आया तो कहेंगे बस अब आपने अच्छा किया, हमने जिंदगी बेकार की। अब हमको 20 साल के बाद लोग कहते हैं हमारे पुराने मित्र कि आपने अच्छा किया, जिंदगी बना दी, हमने अपनी जिंदगी खराब कर दी। तो लंकनी वाला बहुत समय के बाद ये आदमी को सोच आती है। लेकिन है ये बाधाएं चार, इनसे जो पार पड़ेगा वो जाके सीता का पता लगाएगा और उसको फिर सीता की कृपा होगी तो हनुमान भी उसका बाल मांगा नहीं करेगा और उसको फिर कोई रोक नहीं सकता, आशीर्वाद मिल जाए माँ की। और फिर भगवान का वो इतना मित्र होता है कि भगवान गले लगाते हैं कि तुम मेरे भरत के समान भाई हो। जब सीता को ढूंढ के आते हैं तब तो उसकी कृपा से फिर प्रेम मिलता है। तो भक्ति में ये बाधा है, इनको आस्ते आस्ते इससे उठ के ऊपर ये हनुमान से सीखना चाहिए जो घर घर में हमारे है। भोग को छोड़ना चाहिए, अहंकार को छोड़ना चाहिए, ईर्ष्या को नाश करना चाहिए और सीधे रास्ते पे जाने वालों का सहयोग करना चाहिए, तब हमारे को भगवान की भक्ति मिलेगी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अब थोड़ी देर के लिए और आरती करेंगे तो कीर्तन करेंगे और जब कीर्तन समाप्त होगा हमारा विचार है कि 5 मिनट आप हम सब लोग जप करेंगे या पहले जप कर लेते हैं, उसका फल आज एकादशी का उस बच्चे के आत्मा की सदगति के लिए अर्पण करते हैं, फिर आरती कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण, तो अब जप करें 5 मिनट के लिए, आप सब हमारे साथ जप कीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत।